और वैसे भी रविवार भी है, तो किसी को कहीं दुकान में दफ्तर में नहीं जाना है और प्रसाद बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। आज सूर्यास्त तक उपवास है, इसलिए थोड़ा ज्यादा समय भजन कीर्तन और कथा में बिता सकते हैं। कल कथा यहां समाप्त हुई थी कि हिरण्यकश्यप ने 100 दिव्य सालों तक बहुत कड़ी तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से अनेक वर प्राप्त किए, क्योंकि हिरण्यकश्यप स्वयं ब्रह्मा जी के पद को प्राप्त करना चाहते थे और इतना ही नहीं, वो अमर बनना चाहता था। फिर भी क्योंकि वो सीधे से अमर होने की इच्छा व्यक्त नहीं कर सकता, तो अनेक ढंग से अनेक वरदानों के माध्यम से ब्रह्मा जी से ये निवेदन किया हिरण्यकश्यप ने कि कोई ब्रह्मा जी के सृष्टि के प्राणी हिरण्यकश्यप की हत्या नहीं कर सके, उसकी हत्या जल में नहीं हो, आकाश में नहीं, जमीन पर नहीं, अंदर नहीं, बाहर नहीं, दिन में नहीं, रात में नहीं, अस्त्र शस्त्र से नहीं, हाथों से नहीं। इस प्रकार से हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मैं अब अमर बन चुका हूं, अब मेरी हत्या कोई नहीं कर पाएगा। जब ब्रह्मा जी लौटकर चले गए तो हिरण्यकश्यप ने अपने आप को सबसे शक्तिशाली आदमी सारे ब्रह्मांड में समझा। वास्तव में जन साधारण में कई बार एक भ्रांति होती है या गलत फहमी होती है कि किसी भी प्रकार की तपस्या अगर हम करें तो यह भी एक आध्यात्मिक तपस्या है और ये एक बहुत बड़ी बात है और ऐसी तपस्या करने से आदमी महान बन जाता है। एक कई महीने पहले एक सज्जन हमसे मिले थे जो कि बड़े शिक्षित हैं, अच्छे परिवार के हैं, लेकिन वो हमसे बता रहे थे कि उनका मत ये है कि रावण बड़ा अच्छा आदमी था। हमने पूछा कि ऐसा आप क्यों सोचते हैं, तो उन्होंने कहा कि रावण ने इतनी तपस्या की तो इसलिए वो अच्छा आदमी है। अच्छा मतलब जो बहुत आध्यात्मिक है, तपस्या करने से आदमी आध्यात्मिक हो जाता है, इसलिए रावण भी अच्छा आदमी था। लेकिन शास्त्र में कहीं ऐसा नहीं बताया गया है कि केवल किसी भी प्रकार की तपस्या करने से हम आध्यात्मिक बन जाते हैं या हम महान बन जाते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि 3 प्रकार की तपस्या होती है, सत्वगुण की तपस्या, रजोगुण की तपस्या और तमोगुण की तपस्या। सत्वगुण की तपस्या वो होती है जो केवल भगवान की प्राप्ति के लिए सही समय पर किया जाता है। रजोगुण की तपस्या वो होती है जो संसार के कोई वस्तु को प्राप्त करने के लिए की जाती है। जैसे आप में से जो मुंबई शहर में गए हो, आपने देखा होगा कि लोग अपने नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए कैसे जाते हैं आते हैं। रेलगाड़ियां इतनी भरी हुई होती हैं कि इसके क्या कहना, अंदर जाने के लिए जगह नहीं, अंदर किसी तरह से घुस पाए तो बाहर आने के लिए कोई अवस्था नहीं। इतना परिश्रम, बाहर लटक कर जाना पड़ता है धूप में, बारिश में, कई बार आदमी गिर पड़ते हैं, रेलगाड़ी के पहियों के नीचे आकर मर जाते हैं। कितनी तपस्या करते हैं, सुबह को 6 बजे निकलकर रात को 11 बजे आते हैं रोज, तो क्या यह तपस्या नहीं है? भयंकर तपस्या है, और वो भी रेलगाड़ी के भीतर कितनी तपस्या, और फिर दफ्तर में जाकर, व्यवसाय में, फिर आकर घर में, हर प्रकार की तपस्या। तो ऐसा तपस्या तो हर एक आदमी करता है, क्या इसका मतलब है कि वो भी आध्यात्मिक बन गया? क्या केवल एक पैर पे खड़े होकर आकाश में देखना यही एक तपस्या है? तपस्या तो अलग अलग तरह के होते हैं। तो जो तपस्या रावण और हिरण्यकश्यप ने किए वो तमोगुण की तपस्या थी, जिससे शरीर को अत्यधिक कष्ट दिया जाता है, और जो भगवान की प्राप्ति के लिए, जन कल्याण के लिए नहीं किया जाता, आध्यात्मिक प्रगति के लिए नहीं किया जाता, भक्ति भावना को बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता, वो तामसिक तपस्या कहलाता है, इसलिए वो निंदनीय है। कई बार योगी लोग ऐसे भी होते हैं हिमालय में जो कांटों के शैया पर लेटते हैं, ये बहुत कष्ट अपने आप को देते हैं। तो ऐसी तपस्या हमारे लिए योग्य या उचित नहीं है। हमारे लिए तपस्या चाहिए दिव्य तपस्या, जैसे कि ऋषभदेव महाराज ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया, तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्ध येद यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। उन्होंने कहा कि हे मेरे पुत्रों, आपको ऐसी तपस्या करनी चाहिए जिससे कि आपको भगवान की प्राप्ति हो, जिससे आपको दिव्य आनंद की प्राप्ति हो। और दिव्य आनंद का लक्षण ये होता है कि ये अनंत है, कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए आपको इस इंद्र तृप्ति के कार्य में लही नगला चाहिए, जो कि वास्तव में केवल पशुओं के लिए भी उपलब्ध है। आप दिव्य तपस्या कीजिए। तो हमारे लिए तपस्या क्या है? जिस तपस्या का करने से हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं, और जिन तपस्याओं का वर्णन या शिक्षा हमारे परंपरा में आचार्यों ने दिया हुआ है, केवल उनको हमें करना चाहिए। जैसे कि आज नरसिंह देव का आविर्भाव दिवस है, तो हमारे लिए ये दिव्य तपस्या है कि हम कम से कम सूर्यास्त के काल तक उपवास करें पूरी तरह से। जन्माष्टमी के दिन रात को 12 बजे तक हम उपवास करते हैं, रामनवमी के दिन दोपहर को 12 बजे तक उपवास करते हैं। ये थोड़ी तपस्या हमारे लिए है। एकादशी के दिन केवल हम अन्न और दाल वगैरह नहीं खाते हैं, बाकी सब्जियां फल दूध वगैरह लेते हैं। ये भी एक तरह की तपस्या है। इसके अलावा और भी ऐसी कई तपस्याएं हैं जो हम करते हैं, जैसे कि हम रोज 16 माला का जाप करते हैं, ये भी एक तपस्या है। सुबह बैठकर 16 माला एक संग करना बहुत कठिन बात है, कठिन है, लेकिन हम करते हैं। और फिर सुबह जल्दी उठते हैं, हालांकि इच्छा नहीं होती है, और फिर हमें भागवत क्लास में बैठना पड़ता है, यह भी तपस्या है, खास करके वक्ता ऐसे हो तब, लेकिन यह तपस्या हमें करना पड़ता है। ऐसा करने से क्या होता है कि धीरे धीरे हम भक्ति में प्रगति करते हैं। तो हिरण्यकश्यप ने जो तपस्या की वो तमोगुण की तपस्या थी, भयंकर उग्र तपस्या, और ऐसी तपस्या हमारे लिए नहीं है। हम इस काबिल भी नहीं है और न इस तपस्या के लिए इच्छुक भी हैं। केवल तपस्या ये ज्ञान के बल से विश्लेषण किया जाए तो हिरण्यकश्यप महात्मा कहलाएंगे। तपस्या के अलावा हिरण्यकश्यप को शास्त्रों का ज्ञान भी बहुत था। जब वराहदेव ने हिरण्यकश्यप के छोटे भाई हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो बड़ा क्रोध आया हिरण्यकश्यप को, और जब हिरण्यकश्यप ने देखा कि हिरण्याक्ष के पत्नी वृषाभानु और उनके पुत्र, कई पुत्र थे, और उनकी माता दिति सब शोक कर रहे थे, तो हिरण्यकश्यप उनके पास में गए उनको सांत्वना देने के लिए, और जाके कहने लगे कि आपको शोक करना उचित नहीं है। हिरण्याक्ष बड़ा शूरवीर व्यक्ति था, और शूरवीर व्यक्ति को अगर मृत्यु मिल जाए तो ये एक बड़े गौरव की बात है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। जब रणभूमि में उसकी हत्या हो जाती है तो ये कोई शोक की बात नहीं है, गौरव की बात है। और वैसे भी देखा जाए तो हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये हिरण्यकश्यप बोल रहे हैं, याद रखिए, हम आत्मा है। जिस प्रकार से एक प्याऊ में, प्याऊ मतलब जहां रास्ते में कोई पानी पीने का स्थान होता है, एक प्याऊ में कई तरह के प्रवासी आते हैं, पानी पीते हैं और फिर बिखर जाते हैं, इतर तितर हो जाते हैं, कभी मिलते नहीं है एक दूसरे को, केवल चंद क्षणों के लिए आके आपस एक दूसरे का सामना करते हैं, फिर कभी जीवन भर मिलते नहीं है। ठीक उसी तरह से जीव भी एक कुटुंब में आ जाते हैं, थोड़े सालों के लिए रहते हैं, फिर बिखर जाते हैं। पिछले जन्म में कौन हमारा साथी था, शायद वो इस जन्म में नहीं है। इस जन्म में हमारे परिवार के सदस्य, हमारे मित्र, हमारे शत्रु, हमारे अगले जन्म में कहां होंगे, वो सब बिखर जाएंगे। इसलिए ये सारे चीजें, ये सारे संसार के संबंध क्षणिक हैं। हमें इनमें जोर नहीं देना चाहिए। कभी आपने देखा होगा कि नदी के तट पर जब एक वृक्ष होता है और वृक्ष का प्रतिबिंब उस जल में दिखाई पड़ता है, और अगर हवा की वजह से उस नदी के जल में छोटी छोटी लहरें आती हैं तो वो वृक्ष का प्रतिबिंब कैसे दिखने में आता है? लगता है कि वृक्ष हिल रहा है, क्योंकि पानी हिल रहा है इसलिए पानी में वृक्ष का प्रतिबिंब हिलता है और हमें लगता है कि वास्तव में वृक्ष हिल रहा है। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि वृक्ष वैसे का वैसे खड़ा है, केवल पानी हिल रहा है इसलिए हमें ऐसे प्रतीत होता है। ठीक उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति शराब पी जाता है, नशे में आ जाता है, तो उसकी आंखें हिलती हैं और उसको लगता है कि जमीन हिल रहा है, लेकिन जमीन नहीं हिल रहा है, उसकी चेतना हिल रही है, उसका उसके होश ठिकाने नहीं है इसलिए उसे लगता है कि सब कुछ हिल रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीन गुणों के प्रभाव से बद्ध जीव का मन विचलित हो जाता है, और इस प्रकार से विचलित होने की वजह से जीव जो कि इस मन, बुद्धि, अहंकार और इस भौतिक शरीर से परे है, वो इस अलग अलग परिस्थितियों में अपने आप को सोचता है कि मेरा परिवर्तन अब हो गया, मैं जवान था अब मैं बूढ़ा हो गया, मैं पशु योनि में था अब मैं मनुष्य योनि में हूं। तो ये सारे जो शरीर और मन के परिवर्तन होते हैं वो उनसे संबंध जोड़ लेता है और फिर समझता है कि शरीर से जो भी संबंधित हैं वो सब मेरे हैं और मैं ये शरीर हूं। इसलिए कभी भी हमें ये मृत्यु और जन्म, इन दो चीजों के बारे में न तो आनंदित होना चाहिए न हमें शोक करना चाहिए। इसके बारे में एक कथा जो बहुत पुरानी है मैं आपको सुनाना चाहता हूं, फिर से याद दिला रहा हूं, ये हिरण्यकश्यप कह रहे हैं। तो हिरण्यकश्यप कहने लगे, बहुत पुरानी बात है कि उशिनारा राज्य में एक राजा थे जिनका नाम था सुयज्ञ। ये सुयज्ञ एक बार जब अपने शत्रुओं के संग युद्ध कर रहे थे तो उनकी मृत्यु हो गई और रणभूमि पर ऐसे ही पड़े थे वो मृत अवस्था में, क्योंकि वो इतने क्रोध से, उत्साह से युद्ध कर रहे थे तो मरते क्षण उन्होंने अपनी शक्ति दिखाने के लिए अपने दांत से अपने होठों को काट लिए थे, तो दांत ऐसे दिख रहे थे, उसके गहने बिखरे हुए थे, उसकी जो कवच है वो भी बिखर गया था, टूट गया था, बाल भी बिखरे हुए थे, अपने चेहरे पे भी सारी रणभूमि की धूल लगी हुई थी, तो ऐसे पड़े हुए थे। तो उस राजा की रानियां वहां पर दौड़ते हुए आईं और बड़े शोक करने लगी, अपने वक्षस्थल को पीटते हुए रोने लगे कि हाय हाय ये क्या हो गया, अब हमारा क्या होगा, हमारे पति हमें छोड़ के चले गए, अब हम भी पति के साथ जाना चाहते हैं। हे राजन, आपकी वजह से सारे प्रजा को इतना सुख मिलता था, अब आपकी वजह से ही सारे प्रजा को और हम सबको कितना दुख मिलने वाला है, आप हम सबके संरक्षण करने वाले थे, अब आप चले गए तो हमारा संरक्षण कौन करेगा। इस तरह से शोक करते करते समय बीत गया, सूर्यास्त का समय आया और चले गया, लेकिन अंतिम क्रियाएं अभी तक नहीं किए। शास्त्र में बताया जाता है, ये मैं बोल रहा हूं हिरण्यकश्यप नहीं, शास्त्र में बताया जाता है कि किसी की मृत्यु अगर दिन में होती है तो सूर्यास्त के पहले अंतिम क्रियाएं समाप्त होनी चाहिए, शरीर को जला डालना चाहिए, और अगर रात में होती है किसी की मृत्यु तो सूर्योदय के पहले अंतिम क्रियाएं समाप्त करनी चाहिए। तो राजा सुयज्ञ, इनकी मृत्यु दिन में हुई थी तो सूर्यास्त के पहले अंतिम क्रियाएं समाप्त करनी ही थी, लेकिन फिर भी ये रानियां इतना शोक कर रही थी कि सूर्यास्त का समय भी बीत गया लेकिन अपने पति के शरीर को नहीं छोड़ रही थी। अभी फिर से हिरण्यकश्यप बोल रहे हैं। तो हिरण्यकश्यप बोलने लगे कि ठीक उस समय इनकी दर्द भरी आवाज इतनी जोर जोर से सब जगह फैल रही थी कि ये ध्वनि यमराज के लोक तक पहुंच गई, और यमराज ने सुना, देखा कि अरे ये सब क्या हो रहा है यहां। तो यमराज ने अपना रूप बदल लिया और एक बालक का रूप धारण करके उस ऋण भूमि पर आए और आकर वहां तुरंत उनको बोलने लगे कि अरे देखो तो कितने दुर्भाग्य की बात है, वो जोर से बोलने लगे ताकि सारे उपस्थित लोग वहां स्पष्ट रूप से उसको सुन लें। कितने दुर्भाग्य की बात है कि ये इतने बड़े लोग हैं, मैं तो बच्चा हूं, लेकिन ये उम्र में कितने बड़े हैं। इन्होंने देखा है कि हर रोज कितने लोगों की, प्राणियों की मृत्यु होती है, यमराज के दरबार में कितने लोग जाते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि सबकी मृत्यु होनी है, लेकिन फिर भी वो इतने मोहित हैं। उनकी भी मृत्यु एक दिन होने वाली है, इन सब की होने वाली है, लेकिन फिर भी ये इतना शोक कर रहे हैं। कितनी मूर्खता की बात है। वैसे देखा जाए तो मृत्यु सभी को आने वाली है, ऐसा कोई नहीं है जो मृत्यु से बचेगा नहीं, लेकिन यहां हम क्या देख रहे हैं कि ये इतने बड़े अनुभवी लोग भी शोक उस चीज के लिए कर रहे हैं जो तो होना ही है। अब हमें देखिए, हम तो एक छोटे बालक हैं, हमारे कोई पालक नहीं है, हमारी सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है, हम केवल भगवान श्री हरि के ऊपर निर्भर हैं, लेकिन इतने सारे जंगलों के बीच में से गुजरते हुए भी हमारी सुरक्षा भगवान ने की है, कोई खतरनाक प्राणियों ने हमारी हत्या नहीं की है, हम अभी तक जीवित हैं। तो आप सबको जानना चाहिए कि वास्तव में मृत्यु और जीवन ये भगवान के हाथ में होता है। भगवान एकमात्र सबका संरक्षण करने वाले होते हैं, भगवान ही सारे सृष्टि के उगम स्थान हैं, सृष्टि के पालन करने वाले हैं, सृष्टि का विनाश करने वाले हैं, और भगवान की वजह से ही सबकी सुरक्षा होती है या सबका नाश होता है। हम देखते हैं कि कभी भी सड़क पे किसी व्यक्ति का पैसा गिर जाता है, सबकी नजर में नीचे सड़क पर पड़ा रहता है, हर एक व्यक्ति उसको दिख सकता है, लेकिन फिर भी दैव से उसकी किस्मत में लिखा होगा तो उसे वो पैसा मिल जाता है। श्री श्री राधा गोकुलानंद की। तो जब उसका पैसा खो जाता है, सड़क पे गिर जाता है, सबकी नजर में रह जाता है, लेकिन फिर भी वो पैसा उसको मिल जाता है। और कई बार ऐसे हो जाता है कि हमारे घर में हम सुरक्षित पैसा रखते हैं, छुपा छुपा कर दो चार अलमारियों के बीच में डबल लॉक ट्रिपल लॉक डाल के हम लगाते हैं, फिर भी पैसा गायब हो जाता है। कई बार ऐसे हो जाता है कि एक जो मरीज होता है उसके पास अच्छा वैद्य होता है, डॉक्टर होता है, अच्छे प्रकार के औषधियां होते हैं, लेकिन फिर भी वो मर जाता है। कई बार ऐसा मरीज होता है जो बहुत बीमार होता है, कोई औषध नहीं, कोई वैद्य नहीं, लेकिन वो बच जाता है और उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। कई बार एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा होता है जिसमें कि भयंकर खतरे वाले खतरनाक प्राणी होते हैं, जानवर होते हैं, लेकिन फिर भी उसका एक भी बाल नहीं बकता, सुरक्षित अवस्था में जंगल के बाहर निकल जाता है। और कई बार यह भी देखा जाता है कि कोई व्यक्ति सुरक्षित अवस्था में अपने घर में रहता है, उसके परिवार का सदस्य उसके इर्द गिर्द रहते हैं, अस्त्र शस्त्र रहते हैं, सब कुछ रहता है, लेकिन फिर भी उसकी मृत्यु हो जाती है और कोई उसे बचा नहीं सकता। इसका मतलब है कि हमें बचाने वाला या मारने वाला कौन है? हमारे हाथ में ये सब नहीं है, ये केवल प्रकृति के कार्यों से जो कि भगवान के नियंत्रण में चल रहा है, इनकी वजह से ही ये सब होता है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो समझ लेगा कि मृत्यु क्योंकि सबके लिए निश्चित है, इसलिए उसे इस चीज के लिए शोक नहीं करना चाहिए। ये सारे पृथ्वी, सारी भौतिक सृष्टि तीन गुणों से चल रही है, और ये हमारा शरीर भी ऐसे चलता है। और जो मूर्ख व्यक्ति है अपने शरीर से संबंध जोड़ लेता है, इसलिए द्वंद्व में पड़कर उसे शोक करना पड़ता है। एक बार ऐसे हुआ कि एक शिकारी था, और वो शिकारी जब पक्षियों की का शिकार करने जंगल में गया तो उसने एक पक्षी की हत्या की, स्त्री थी पक्षी, और वो पक्षी नीचे गिर पड़ी। लेकिन उस पक्षी के पति ने जब ये देखा तो उसका हृदय भर आया, दुख से बड़ा शोक करने लगा और अपने किस्मत को ठुकराने लगा, धिक्कारने लगा, कहने लगा कि अरे हाय रे, ये किस्मत, ये क्या बात है, किस्मत ऐसे कठोर है, किस्मत को क्या मिला होगा इतना क्रूर कार्य करने से, क्या किस्मत का कोई लाभ हुआ इसमें, कोई फायदा हुआ? मुझ जैसे एक साधारण प्राणी को अभी पत्नी हित बना दिया, इस बेचारे का क्या कसूर था? और हमारे इतने छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके पंख भी नहीं आए हैं, जो उड़ नहीं सकते हैं, जो पूरी तरह से मां के ऊपर निर्भर थे। ऐसे बच्चों को, बच्चों से उन्होंने मां को छीन लिया है, तो ऐसी किस्मत के क्या कहने। अब मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा? ये पत्नी कितने मीठे शब्दों में मुझसे बोला करती थी, मेरी सेवा किया करती थी, अब वो चली गई मेरे से, अब मेरा क्या होगा, हाय हाय। तो ऐसे जब वो शोक कर रहा था, तो उस समय शिकारी ने उसको भी देख लिया और उसको भी तीर मार दिया और वो भी गिर पर मर पड़ा। तो यमराज उस बालक के रूप में बोलने लगे कि आप भी इस कुलिंग पक्षी की तरह हो, आपका पति तो मर चुका लेकिन आप उसी तरह से शोक कर रहे हैं जैसे वो कुलिंग। अब शोक करते करते आपकी भी मृत्यु आ जाएगी, ऐसे अगर आप समय बिताओगे तो। 100 साल 1000 साल तक भी आप शोक करेंगे तो आपके पति क्या जीवित हो सकेंगे? नहीं। तो क्यों आपका समय आप व्यर्थ गवा रहे हैं? ऐसे शोक में आपका व्यर्थ समय गवाएंगे तो फिर आपकी भी मृत्यु हो जाएगी, और आपके पति की मृत्यु तो हो ही चुकी है और वो जीवित नहीं हो जाएंगे। इतना बोलकर वो बच्चा जो कि यमराज थे वहां से चले गए, और तुरंत सुयज्ञ राजा की रानियों ने बड़े वो आश्चर्यचकित हो गए, विस्मित हो गए कि इतना छोटा बालक इतना दर्शन शास्त्र बोल सकता है, और उनका शोक मिट गया और राजा की अंतिम क्रियाएं जल्दी से कर ली और उनका मन शांत हो गया। तो ये कहानी बताकर हिरण्यकश्यप ने अपने रिश्तेदारों से कहा कि इसलिए आप शोक मत कीजिए, ये आपके लिए उचित नहीं है। ये सारा उपदेश सुनकर हिरण्याक्ष की पत्नी, हिरण्याक्ष की मां और हिरण्याक्ष के पुत्र ये सारे शांत हो गए इस दिव्य संदेश को, आध्यात्मिक उपदेश को सुनकर। और फिर वो अपने अपने काम में लग गए और हिरण्यकश्यप अपने काम में लग गए। इसका मतलब देखिए, हिरण्यकश्यप को कितना ज्ञान था। जो भी कुछ उपदेश हिरण्यकश्यप ने दिया, क्या उसमें कोई गलती आप ढूंढ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। रावण भी इसी प्रकार के पंडित थे। रावण का जन्म भी एक ब्राह्मण कुल में हुआ, उनके पिता ब्राह्मण थे जिनको, उनका नाम था विश्रवा। और हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष इनके पिता भी ब्राह्मण थे, इनका नाम था कश्यप मुनि। तो ब्राह्मणों से जन्म हुआ था दोनों का, लेकिन रावण बने बड़े राक्षस और हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने बड़े असुर, वो भी राक्षस की तरह ही थे। इस प्रकार से केवल अगर कोई व्यक्ति तपस्या करता है या केवल उसको पुस्तकीय ज्ञान है शास्त्रों का, तो इससे व्यक्ति महान नहीं बनता। महान व्यक्ति कौन कहलाता है? जब वो भगवान के शरण में जाता है, भगवान की भक्ति करता है, तब वो महान कहलाता है। महात्मानस्तु माम पार्थ दैविम प्रकृतिम आश्रिता भजन्ति अनन्य मनुषो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। भगवत गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि महात्मा वो व्यक्ति होता है जिसने भगवान की दिव्य शक्ति का पूरी तरह से आश्रय लिया हुआ होता है। और आश्रय लेकर वो क्या करता है? कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि मैंने भी भगवान की दिव्य शक्ति का आश्रय लिया है, लेकिन इसके लिए लक्षण क्या है, प्रमाण क्या है? भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। महात्मा अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण के भजन में लगा हुआ रहता है, भगवान की सेवा भक्ति के अलावा और कुछ वो जानता ही नहीं है। और वह स्पष्ट रूप से ये जानता है कि भगवान श्री कृष्ण सब कारणों के कारण हैं। ये सब जानते हुए सच्चे जो महात्मा होते हैं वो केवल व्यर्थ की तपस्या नहीं करते हैं, व्यर्थ के पुस्तकीय ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते हैं। जितनी तपस्या, जितना अभ्यास, जितना अध्ययन हमारे भक्ति को बढ़ाने के लिए आवश्यक है, उतना ही हमें करना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। ये हमारे आचार्यों की शिक्षा है, उपदेश है हम सब के लिए। तो खैर, जब हिरण्यकश्यप ने यह उपदेश समाप्त कर लिया तो अपने आप को सबसे शक्तिशाली समझकर सारे ब्रह्मांड में वो जाके उन्होंने सबको हरा दिया। ऊपर के लोकों में, नीच के लोक में, बीच वाले लोक में, सब जगह भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, तीनों लोकों के वो स्वामी बन गए। यहां तक के जो इंद्रदेव हैं, जो गंधर्व लोक हैं, विद्याधर लोक, चारण लोक, सिद्ध लोक, और जो गरुड़ जहां रहते हैं वो लोक, सर्पों के लोक, अलग अलग तरह के लोक होते हैं, ये सारे लोकों के ऊपर उन्होंने प्रभुत्व जमा दिया। और सारे ऊपर के लोकों के निवासी केवल हिरण्यकश्यप से घबराकर उसकी सेवा में लगे हुए थे। अब केवल तीन व्यक्ति ऐसे थे जो कि हिरण्यकश्यप की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे थे या उसकी सेवा में नहीं लगे हुए थे। वो कौन थे? प्रह्लाद का जन्म नहीं हुआ था उस समय। ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी, ये तीन थे केवल। इन तीन के अलावा सारे ब्रह्मांड में हर एक व्यक्ति हिरण्यकश्यप की सेवा में लगा हुआ था। हिरण्यकश्यप इतना शक्तिशाली था कि उसकी डर में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बता रहे थे कि जो गंधर्व लोकों के जो सबसे प्रमुख गायक हैं तुम्बुरु और विश्वावसु, और यहां तक कि मैं भी और अप्सरा गण, विद्याधर लोक के निवासी, सब हिरण्यकश्यप के सामने आकर उसकी स्तुति किया करते थे सारे प्राणी। और हिरण्यकश्यप के डर से सारे पृथ्वी अनाज देती थी बिना हल चलाए हुए, और जो पहाड़ हैं वो नाना प्रकार के धातु देते थे खुद ब खुद, और जो सागर हैं और नदियां हैं वो भी नाना प्रकार के रत्न खुद ब खुद हिरण्यकश्यप के डर में दे देते थे, और जो वृक्ष हैं वो खुद ब खुद हिरण्यकश्यप के डर में वो फल फूल दिया करते थे। तो इस प्रकार से सारा ब्रह्मांड अकेले हिरण्यकश्यप के डर से चल रहा था। वैसे भगवान की योजना के अनुसार ब्रह्मांड के हर एक कार्य के लिए एक न एक देवी या देवता नियुक्त किए जाते हैं। जैसे कि वर्षा के लिए इंद्रदेव अधिष्ठाता देव हैं, किसी चीज को सुखाने के लिए वायुदेव, पवन देव जिम्मेदार हैं, और आग के लिए अग्निदेव जिम्मेदार हैं। लेकिन हिरण्यकश्यप ने ये तीनों कार्य अपने हाथ में ले लिए, तीनों देवताओं को हटा लिया और अकेले अपने आप सारे देवी देवताओं के जिम्मेदारी डिपार्टमेंट संभाल लिए। सारे जो देवी देवता हैं बेरोजगारी का सामना करने पड़ा उनको, कोई काम नहीं, केवल इधर उधर वो गए, उनको कोई काम नहीं, केवल हिरण्यकश्यप की स्तुति करना। इस प्रकार से अकेले हिरण्यकश्यप ने सारे ब्रह्मांड को चलाना आरंभ कर दिया। देखिए कितनी कठिन बात है। आप जानते हैं कि एक देश को चलाना कितना कठिन है। देश की बात क्या है, एक राज्य को चलाना, एक छोटे से शहर को चलाना, शहर तो क्या, इस छोटे मंदिर को चलाना कितना कठिन है कि नहीं? जवाब नहीं। तो हिरण्यकश्यप सारे ब्रह्मांड को चला रहे थे अकेले बिना किसी के सहायता के, तो सोचिए कितनी शक्ति हुई होगी हिरण्यकश्यप में, हम सोच भी नहीं सकते। तो जब इतना सब हो गया हिरण्यकश्यप की इतनी हो गई शक्ति उनकी, जाके इंद्रदेव को अपने ही दरबार से हटा दिया और नंदन कानन का भोग करके, अप्सरों का भोग करके अमरावती में, जो कि इंद्रदेव की राजधानी थी, इंद्रदेव के महल में हिरण्यकश्यप निवास करने लगे। तो सारे जो लोगों के दिक्पाल हैं, जो अधिष्ठाता देव हैं, वो बड़े चिंतित थे, बड़े दुखी थे। तो सब आपस में मिलजुल कर पूछताछ करते क्या किया जाए, इसके बारे में क्या करना चाहिए। तो सब ने सोचा कि हमें विष्णु के पास ही जाना चाहिए, और कोई उपाय हमारे पास नहीं है। तो सारे एकत्र हुए और फिर प्रार्थना करने लगे, हम उस दिशा का नमन करते हैं कि जिस दिशा में परम सत्य भगवान श्री नारायण विष्णु निवास करते हैं, और जिस दिशा में वो लोग जाते हैं जो पूरी तरह से हृदय में शुद्ध हैं, जिन्होंने सारे संसार को त्याग दिया है, जिनका मन बिल्कुल निर्मल है, वो लोग जहां जाते हैं और फिर से लौट कर नहीं आते हैं, उस दिशा को हम नमन करते हैं और भगवान का गुणगान करने लगे। उस समय व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ रहा था और ये आवाज गंभीर थी, बादलों के गरजने की तरह, लेकिन फिर भी बड़ी मधुर आवाज थी, भय से मुक्त कराने वाली आवाज थी। इस आवाज को सुनकर तुरंत सारे अधिष्ठाता जो देवी देवता थे उनका मन थोड़ा शांत हो गया और वो सुनने लगे बड़े ध्यान से। तो भगवान बोले कि हे विद्वान गण, आप निश्चिंत रहो, आप मेरे शरण में आओ, आपका समय मेरी कथा का श्रवण कीर्तन करने में बिताओ, मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो और तुम सारे कष्टों से मुक्त हो जाओगे। जहां तक हिरण्यकश्यप की बात है, मैं उसकी हरकतों से पूरी तरह से मैं ज्ञात हूं, मुझे मालूम है वो क्या कर रहा है। आगे चलकर जब हिरण्यकश्यप अपने शुद्ध भक्त पुत्र प्रहलाद के प्रति अत्याचार करेगा, तब मैं प्रकट हो जाऊंगा और उसकी हत्या करूंगा। इसका मतलब है कि हिरण्यकश्यप जब वैष्णव अपराध करेंगे उस समय मैं आऊंगा, ऐसे भगवान के बोलने का मतलब निकला। आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसके पास कितने भी गुण क्यों न हो, धन क्यों न हो, शिक्षण ज्ञान क्यों न हो, अगर उसने भगवान के भक्तों के प्रति अपराध किया तो बहुत ही जल्द उसका विनाश निश्चित है। तो भगवान ये संदेश देना चाहते थे कि ये हिरण्यकश्यप इतना शक्तिशाली है कि सारे ब्रह्मांड को उसने वश में कर लिया, लेकिन ब्रह्मा जी के इतने सारे वरदान प्राप्त करने के बाद भी ये सारे वरदान वैष्णव अपराध के सामने क्षीण हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, शून्य के बराबर होंगे, क्योंकि वैष्णव अपराध इतना बड़ा अपराध होता है और खास करके प्रहलाद जैसे एक शुद्ध भक्त के प्रति किसी ने अपराध किया तो भगवान कैसे सहन कर सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जब भगवान ने इन देवी देवताओं को ऐसा उपदेश दिया तो सब बड़े हर्ष उल्लास के साथ में अपने अपने लोकों में, अपने अपने धामों में लौटकर चले गए। आगे नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को बताया। याद रखिएगा कि ये कथा सुखदेव महाराज परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, परीक्षित महाराज के प्रश्न के उत्तर में जो कल हमने चर्चा की थी कि भगवान पक्षपात क्यों करते हैं, ये संदेह परीक्षित महाराज का था। तो उस संदर्भ में शिशुपाल की कथा बताई सुखदेव गोस्वामी ने और कहा कि नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज के बीच में ये संवाद हुआ था और ये संवाद अभी भी चल रहा है और सुखदेव गोस्वामी इस संवाद का वर्णन परीक्षित महाराज को कर रहे हैं। तो नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि हिरण्यकश्यप, इसके चार पुत्र थे, चार पुत्रों में से श्रेष्ठ पुत्र का नाम था प्रहलाद और ये प्रहलाद बड़ा अच्छा भक्त था, इसके अंदर सारे अच्छे गुण थे, विष्णु का भक्त था, लेकिन फिर भी हिरण्यकश्यप ने उसके प्रति बहुत अत्याचार किया, उसको मारने का प्रयास किया और इस समय नरसिंहदेव प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया। तो उस समय युधिष्ठिर महाराज के मन में एक प्रश्न आया कि हे नारद मुनि, मेरे मन में यह संशय है, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि एक पिता अपने बच्चे की हत्या करने का प्रयास करे और वो भी प्रहलाद महाराज इतने सौम्य स्वभाव के थे, निर्मल हृदय के थे, बड़े सुशील थे, विनीत थे, फिर भी आज्ञाकारी पुत्र होने के बाद भी हिरण्यकश्यप जैसे एक व्यक्ति राजा अपने ही पुत्र को ऐसे मार डाले, ये क्यों, क्या कारण हो सकता है इसके लिए, ये बड़ी विचित्र बात लग रही है। तो नारद मुनि ने प्रहलाद के चरित्र का वर्णन आरंभ किया और कहने लगे कि प्रहलाद कि अंदर सारे दैवी गुण संपन्न थे। उसके इंद्रियां वश में थी, उसका मन शांत था, ब्राह्मण के सारे गुण प्रहलाद के अंदर थे, उसके हृदय में दया भावना थी और सब प्राणियों के वो हितैषी थे। जो गरीब थे उनके प्रति वो दया भावना रखते थे, जो उनके बराबर के थे उनके साथ प्रेम और मैत्री की भावना रखते थे, जो उनसे वरिष्ठ थे उनके सामने एक दास के रूप में पेश आते थे, और जो उनके गुरुजन अध्यापक और बहुत ही वरिष्ठ गुरु भाई इत्यादि थे उनको साक्षात भगवान के समान उनको उनके साथ में व्यवहार करते थे। तो इस प्रकार से प्रहलाद दिव्य गुणों से संपन्न थे, उनकी बोली बिल्कुल मीठी थी, किसी का हृदय दुखाते नहीं थे, भगवान श्री वासुदेव श्री कृष्ण के शरण में हमेशा रहा करते थे, वासुदेव के अलावा वो कुछ नहीं जानते थे। हालांकि वो छोटे बालक थे फिर भी दूसरे बालकों की तरह वो चंचल नटखट नहीं थे, शरारत और मस्ती नहीं किया करते थे, हमेशा अपने ही चित्त के अंदर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया करते थे, क्योंकि अपने पूर्व जन्मों की भक्ति की वजह से उनके अंदर इस जन्म में स्वाभाविक तौर से भगवान श्री हरि के प्रति भक्ति की भावना जागृत हुई थी, तो हमेशा कृष्ण भावना में रहते थे। और आगे नारद मुनि बताने लगे कि प्रहलाद महाराज का व्यवहार कैसे हुआ करता था। कहने लगे कि कभी कभी प्रहलाद एकदम चुप से रह जाते थे, कभी कभी एकदम नाचने लग जाते थे, कभी कभी रोने लग जाते थे, कभी कभी हंसने लग जाते थे, कभी कभी ज्यादा बोलने लगते थे, कभी कभी नहीं बोलते थे। तो बाहर लोगों को समझ में नहीं आता था कि प्रहलाद ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्योंकि अपने अंतःकरण में सदैव वो भगवान का दर्शन किया करते थे, भगवान के प्रेम से उनका हृदय इतना भर चुका था, तो ये प्रेम के अलग अलग लक्षण उनके शरीर के माध्यम से प्रकट होते जा रहे थे। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि आचार्य इस बात के ऊपर इस तरह से टीका करते हैं कि जैसे एक छोटा बच्चा अपने मां की गोदी में रहता है, बड़े सुरक्षा का अनुभव करता है, जब मां होती है तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है उसके लिए, जब अचानक मां उसको छोड़ के चली जाती है किसी काम के लिए और बच्चे को पता चल जाता है कि मां चली गई है, तो तुरंत शोकग्रस्त होकर वो चिल्ला चिल्ला कर रोता है, लेकिन जब मां लौटकर आ जाती है तो तुरंत उसका रोना बंद हो जाता है और फिर से वो हर्षित हो जाता है, उल्लास हर्ष उल्लास का अनुभव करता है। तो ठीक उसी प्रकार से प्रहलाद अपने मन ही मन में सदैव भगवान का दर्शन किया करते थे, भगवान की अनुभूति किया करते थे। कभी कभी जब उन्हें ऐसा लगता था कि भगवान दूर चले गए हैं तो वो रोने लगते थे। उनको बाहर के संसार से कोई कुछ लेना देना नहीं था, बाहर क्या चल रहा है नहीं चल रहा है उनको कुछ मालूम नहीं था। जैसे एक छोटा बच्चा जब होता है उसे बिल्कुल पता नहीं चलता है कि वो किस तरह से शौच करता है, पेशाब करता है, खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, सब मां उसके साथ करा देती है, मां को सब पता चलता है कि वो क्या कर रहा है कैसे कर रहा है, बच्चे को बिल्कुल पता नहीं चलता, उसका शरीर ऐसे ही काम करते रहता है, मां देखभाल करती रहती है। ठीक उसी तरह से प्रहलाद को पता नहीं चलता था कि वो कैसे बोल रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कैसे शौच कर रहे हैं, कुछ उनको पता नहीं चलता था, स्वाभाविक तौर से खुद ब खुद उनका शरीर चलता रहता था, क्योंकि वो श्री गोविंद के शरण में रहते थे, जैसे कि एक बालक अपने मां के शरण में रहता है और उस बालक को बिल्कुल पता नहीं चलता कि मेरा शरीर मेरा मन कैसे काम कर रहा है। ठीक प्रहलाद भी इसी तरह से अपना जीवन जीने लगे। तो जब उनको अपने मन में लगता था कि भगवान थोड़े दूर चले गए हैं तो रोना शुरू कर देते थे। कभी कभी जब मां देखती है कि बच्चा रो रहा है तो कहती है मैं आ रही हूं रो नहीं, और फिर आ जाती है। तो उसी प्रकार से भगवान अपने हृदय में ही कभी दूर चले जाते थे, ऐसा अगर अनुभव होता था प्रहलाद को तो वो रोने लग जाते थे, और जब भगवान कहते थे मैं आ रहा हूं चिंतित नहीं हो, तो फिर से वो हंसने लगते थे, चुप चुप हो जाते थे, और जब आ जाते थे भगवान उनके पास में तो आनंद के वजह से नाचना कूदना शुरू कर देते थे। तो ये जो अंदर की बातें हैं भक्ति के, जो अलग अलग उच्चतम भक्ति के स्तर के लक्षण हैं, ये अभक्तों को जानना बड़ा मुश्किल है। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञेह न बुझाए, चैतन्य चरितामृत में बताया जाता है कि एक बहुत ही प्रगतिशील वैष्णव के चरित्र, उसके व्यवहार को समझना बड़ा कठिन है। तो उसी प्रकार से प्रहलाद के व्यवहार को समझना लोगों के लिए बड़ा कठिन था। ये क्या बात है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी चुप, कभी ज्यादा बोलता है, कभी नाचता है, कभी कूदता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि अंदर ही अंदर से प्रहलाद का भगवान के साथ में बहुत ही निकट का संबंध चल रहा है, आदान प्रदान प्रेम का चल रहा है, कभी मिलन कभी विरह है, कभी मिलन कभी विरह है। ये रस का आस्वादन अंदर ही अंदर से प्रहलाद हमेशा करते थे, जो बाहर किसी को पता नहीं चलता था। इस प्रकार से प्रहलाद को भी पता नहीं चलता था कि मेरा शरीर कैसे चल रहा है। बिल्कुल शारीरिक भावना में नहीं थे वो, शरीर है भी या नहीं भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए प्रहलाद का गौरव, प्रहलाद की महानता, शरीर का अस्तित्व भी वो नहीं जानते थे कि मेरा शरीर है भी या नहीं। केवल वो आत्मा के स्तर में स्थित थे, अपना नित्य आध्यात्मिक संबंध भगवान के संग उन्होंने पूरी तरह से पर्याप्त परिपूर्ण अवस्था में स्थापित कर लिया था। इस प्रकार से प्रहलाद हमेशा भक्ति भाव में रहा करते थे। इतना होते हुए भी हिरण्यकश्यप ने सोचा कि अभी प्रहलाद की 5 साल की आयु हो चुकी है, अभी प्रहलाद को पाठशाला में डालना चाहिए। तो असुरों के कुल गुरु थे शुक्राचार्य, शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे जिनका नाम था शंड और अमरक, और ये 2 पाठशाला के अध्यापक बने, बच्चों के गुरु बने, और ये बच्चों को साधारण जो असुरों के पुत्रों को सीखना चाहिए उनको वो सिखा रहे थे। राजनीति, किस प्रकार से शत्रु को परास्त करना, किस प्रकार से मित्र का फायदा उठाना, और फिर अर्थव्यवस्था, कूटनीति, ये सारी चीजें वो सिखा रहे थे। प्रहलाद तो पाठशाला में जाते थे लेकिन फिर भी बिल्कुल कोई रुचि नहीं थी, दिलचस्पी नहीं थी इन बातों में, केवल जाना है इसलिए जाते थे। और उनके मित्र जो कि दूसरे असुरों के पुत्र थे वो भी वहां आया करते थे। इस प्रकार से उनका शिक्षण चलता गया। एक बार प्रहलाद को अपने पिता हिरण्यकश्यप ने बुलाया और कहने लगे कि अरे प्रहलाद, बहुत दिनों से तुम अभी पाठशाला जा रहे हो, आओ मेरे गोदी में बैठो। प्रहलाद का चुंबन किया, बाल सूंघ लिए, और बड़े प्रेम से हिरण्यकश्यप ने पूछा कि प्रहलाद, ये बताओ, तुमने बहुत सारी चीजें अपने पाठशाला में अपने गुरुजनों से सीखी होंगी, सबसे श्रेष्ठ विषय जो तुमने सीखा वो क्या है, उसके बारे में मुझे बताओ। तो प्रहलाद ने जवाब दिया, तत्साधुमन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात् हित्वात्मपातम गृहमंधकूपम वनम गतो यद हरिम आश्रयेत। प्रहलाद ने बताया कि हे पिताजी, जो व्यक्ति असत्य में अपने चित्त को केंद्रित करते हैं, सदा समुद्विग्न धियाम असत ग्रहात, जो असत का ग्रहण करते हैं, तो उनका मन, उनकी बुद्धि हमेशा विचलित रहती है, वो हमेशा चिंतित रहते हैं। तो हमें ऐसे जगह को त्यागना चाहिए, हित्वात्म पातम, जहां की कोई आध्यात्मिक संस्कृति या सभ्यता नहीं हो, गृहम अंधकूपम, और जिस घर में आध्यात्मिक संस्कृति नहीं है वो केवल एक ऐसे कुआं है जिसमें अंधकार है और कुछ नहीं है, पानी भी नहीं है। तो ऐसे घर को, ऐसे स्थान को हमें त्यागना चाहिए, वनम गतो, और हमें वन में जाना चाहिए, वृंदावन में जाना चाहिए, और जाकर क्या करना चाहिए, श्री हरि का आश्रय लेना चाहिए। तो प्रहलाद ने अपने पिता को उपदेश दिया, आदेश दिया कि हे हिरण्यकश्यप राजा, असुरों में से सर्वश्रेष्ठ असुरवर्य देहिनाम, कि आप क्योंकि एक ऐसे स्थान में रह रहे हैं जो कि अंधकूप है, जिसमें कोई आध्यात्मिक संस्कृति नहीं है, इसलिए इस जगह को त्यागी और आप जंगल में जाइए और भगवान विष्णु का आश्रय लीजिए। जब हिरण्यकश्यप ने यह बात सुनी तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए, अरे मेरा बच्चा और ये ऐसे बातें कर रहा है। तो पहली बार ये घटना हुई तो बड़े जोर से हंसने लगे और शंड और अमरक को बुलाया और कहने लगे, अरे ब्राह्मण, ऐसे लगता है कि मेरे शत्रु यहां इस पाठशाला में आए हैं वेश बदलकर, और मेरे पुत्र इसका चित्त उन्होंने प्रदूषित कर दिया है, इसलिए बड़ा ख्याल रखना, इसको ले जाओ, देखो शायद कोई वैष्णव विष्णु के दूत आ रहे हैं और इसका मन बिगाड़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि यह बढ़िया फर्स्ट क्लास असुर बन जाए, लेकिन कोई आकर इसको फर्स्ट क्लास भक्त बनाने का प्रयास कर रहा है, ये तो विचित्र बात है, ये तो मैं होने नहीं दूंगा। तो ऐसे हिरण्यकश्यप जैसे कई हैं आजकल के समाज में भी, बच्चे अगर सिगरेट पिए, दारू पिए, इधर उधर करें तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के मंदिर में जाए तो विरोध करते हैं। तो प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि यहां भी कलयुग में कितने ही हिरण्यकश्यप हैं, लेकिन छोटे मोटे हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप की उस समय शक्ति कितनी थी, यहां कलयुग में किसी की शक्ति नहीं है। तो फिर ये अध्यापक शंड और अमरक प्रहलाद को वापस ले गए और गुरुकुल में वापस आए तो बड़े मीठे शब्दों में, बड़े शांति से, प्रेम से वो प्रहलाद से बोलने लगे। ऐसा नहीं कि उनके हृदय में प्रहलाद के प्रति ज्यादा प्रेम था, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि अगर कठोर शब्द बोलेंगे तो प्रहलाद शायद सच्ची बात नहीं बताएगा, तो उन्होंने सोचा कि मीठे मीठे शब्द बोलकर जो सच्ची बात है प्रहलाद से बाहर निकालें। तो उन्होंने कहा, अरे प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, देखो हम तुम्हारे शुभ चिंतक हैं, तुम्हारे गुरुजन हैं, तुम्हारा भला ही हम चाहते हैं, तो हमसे सत्य बोलना, सत्य छुपाना नहीं, झूठ नहीं बोलना, बताओ तो सही तुम ऐसे विपरीत बातें कैसे कर रहे हो जो कि तुम्हारे मित्र नहीं करते। कोई भी तुम्हारे मित्रों में से ऐसी बातें नहीं करता जो कि तुम कर रहे हो। अभी तुम्हारी बुद्धि ऐसे भ्रष्ट कैसे हो चुकी? क्या ऐसा है कि विष्णु के दूत यहां पर आ गए हो? विष्णु के दास वैष्णव यहां आकर, हमारे शत्रु यहां आकर तुम्हारा मन बिगाड़ लिया? क्या ऐसा है? तो उस समय प्रहलाद ने जवाब दिया, मैं तो सबसे पहले उन भगवान को नमन करता हूं जिनकी माया शक्ति के प्रभाव में आकर यहां संसार के लोग भेदभाव करते हैं और सोचते हैं कि ये मेरा शत्रु है और वो मेरा मित्र है। वास्तव में ये तो केवल अज्ञान है। शारीरिक अवस्था में आकर ही ऐसे द्वंद्वों की अनुभूति होती है, लेकिन वास्तव में जो भगवान श्री हरि का आश्रय में जाता है और उसको भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है तो वो समझ लेता है कि सारे जीव भगवान के अंश हैं और सभी को भगवान का भक्त बनना चाहिए। इसलिए ऐसे लोग जो वास्तव में पंडित होते हैं, किसी में भेदभाव नहीं करते, किसी को अपना शत्रु नहीं समझते और न ही किसी को अपना मित्र, सभी से प्रेम करते हैं वो। लेकिन क्योंकि आप सब अज्ञान में हैं, आप विष्णु को नहीं पहचानते हैं, इसलिए आप ऐसे भेदभाव कर रहे हैं। तो हां, मैं भी भगवान विष्णु का भक्त हूं और मेरा मन उनकी चरण कमलों में इस प्रकार से आकृष्ट हो रहा है जैसे एक लोहा चुंबक लोहा की तरफ आकर्षित हो जाता है। इसलिए मैं स्वतंत्र नहीं हूं, जिस तरह से लोहा चुंबक स्वतंत्र नहीं रहता लोहे के सामने, तो यही जो विष्णु है सब प्राणियों के शुभ चिंतक है, और इसलिए जीव का स्वभाव है कि वो विष्णु के शरण में जाए, विष्णु की भक्ति करे और विष्णु की माया शक्ति में आकर आप सोच रहे हैं कि हमारे तथाकथित शत्रु ने मेरा मन विचलित कर दिया है, तो वास्तव में यह सच है, तो आपको भी विष्णु के शरण में जाना चाहिए। जब ऐसे प्रहलाद ने कहा तो शंड और अमरक बड़े क्रोधित हो गए और कहने लगे, अरे लाओ छड़ी लाओ, तो इस प्रहलाद को अभी लोगों का सामना करने के लिए जो चौथा तरीका है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में वो राजनीति की एक बात कर रहे थे। चाणक्य पंडित भी इसी बात को बताते हैं कि राजनीति में, हालांकि हमें इस क्षेत्र में कोई रुचि नहीं है, फिर भी क्योंकि शास्त्रों में इनका वर्णन आता है कि राजनीति में चार तरीके रहते हैं, साम, दान, भेद और दंड। अगर हमारे खिलाफ कोई व्यक्ति है, कोई राजा है और प्रजा में, समाज में उत्पात पैदा कर रहा है, लोगों को उकसा रहा है राजा के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जाने के लिए, तो सबसे पहले राजा को चाहिए साम, उसको शांत करे मीठे शब्दों से, अरे भाई तुम ऐसे क्यों करते हो, तुम इतने महत्वपूर्ण हो, तुम ऐसे हो वैसे हो। अगर वो शांत हो जाए तो ठीक है, नहीं शांत हो जाए तो दान, उसको कुछ ऊंचा स्थान देना चाहिए। अच्छा भाई तुमको ये इलेक्शन के लिए टिकट दे देते हैं, तुमको ये मंत्री का पद दे देते हैं, तुमको वहां कुछ और कार्य दे देते हैं, दान, तो उससे वो संतुष्ट हो जाए दूसरा कदम तो ठीक है। अगर नहीं संतुष्ट हो जाए तो और थोड़ा आगे कदम उठाना पड़ता है, वो क्या है, ये ज्यादा ही कुछ कर रहा है, तो इसके लोग जो है, इसके साथी जो है, इसके ग्रुप जो है, उनमें भेद करना, भेदभाव, एक को दूसरे से खिलाफ लगाना, इसको जाके कहना कि उसने तुम्हारे बारे में ऐसे कहा, और उसको जाके कहना कि तुम्हारे मित्र ने तुम्हारे बारे में ऐसे कहा, और आपस में टक्कर लगाकर चू हो जाना, भेद, जो अंग्रेज ने किया। प्रभुपाद जी कहते थे डिवाइड एंड रूल, जो यहां सारे भारतवर्ष के लोग थे उनका भेद करके उनको एक दूसरे के सामने उनको प्रतिद्वंदी बना दिया, तो यह है भेद। और भेद भी नहीं चला तो आखिर में दंड, फिर उनको या तो जेल में डालना या कोई दंड देना या मृत्यु से ही, उनको जान से ही मार डालना। तो शंड अमर कहने लगे, ये साम, दान और भेद का समय चला गया, अब प्रहलाद को दंड ही देना होगा, तो छड़ी लेकर आए प्रहलाद के सामने। अरे तुम ऐसे क्यों बातें बोल रहे हो, कहां से ये सब सीखे हो, अभी आईना ऐसे नहीं करना, ये ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तो खैर शिक्षा फिर से चालू हो गई प्रहलाद की, और पाठशाला ऐसे चलता गया। और एक दिन अपने मां, उन प्रहलाद की मां ने उसको अच्छी तरह से नहलाया, नहलाकर सजाया, अच्छे अच्छे आभूषण इत्यादि पहनाए, और शंड और अमरक ने प्रहलाद को फिर से हिरण्यकश्यप के सामने लाया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को देखा और प्रहलाद ने दंडवत किया, प्रणाम किया अपने पिता को। हिरण्यकश्यप के आंखों में प्रेम के आंसू आ गए, अरे मेरे बेटे आ जाओ, बैठो मेरे गोदी में, फिर से चुंबन किया प्रहलाद का और सर सूंघने लगे और कहने लगे, हां अभी काफी समय बीत चुका है, तुमने बहुत कुछ सीखा होगा अपने अध्यापकों से, तो बताना मुझे जो भी विषय तुमने सीखे हैं उसमें से सर्वश्रेष्ठ कौन सा विषय है। और हिरण्यकश्यप सोच रहे थे कि अभी शायद कुछ अच्छी बात बोलेगा प्रहलाद, बोलेगा कि किस मैं ये सीखा हूं कि कैसे मेरे शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता हूं, कैसे शत्रुओं के बीच में भेद करके उनको आपस में नष्ट करने के लिए मैं कुछ कूटनीति कर सकता हूं, ऐसे कुछ कहेगा प्रहलाद। लेकिन प्रहलाद ने क्या जवाब दिया, बड़े शांति से गोदी में बैठकर हिरण्यकश्यप के, जिसके भ्रुकुटी के ऊपर जाने से देवी देवता कांपते थे, घबराते थे, उस व्यक्ति के गोदी में बैठकर उसके शत्रु का गुणगान करने लगे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चिन्ह नवलक्षणा क्रियेत भगवत अद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम। वो कहने लगे, हे पिताजी, अधीतम उत्तमम, जो सारी विद्या है, जो सारा ज्ञान है, शिक्षण है, उसमें से उत्तम शिक्षा उस व्यक्ति के पास है जो कि इन नौ प्रकारों से भगवान श्री विष्णु की भक्ति करता है, उनकी सेवा करता है। सबसे पहला है श्रवण, भगवान के बारे में सुनना, उनकी कथाएं, उनका उपदेश इत्यादि, उनके बारे में बोलना, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, उनके बारे में स्मरण करना सतत। पाद सेवनम, पाद सेवनम मतलब उनके चरण कमलों की सेवा करना, अर्थात हमेशा उनके चरण कमलों का स्मरण करते हुए उनको अपना गंतव्य स्थान बनाना। और पाद सेवनम का अर्थ यह भी हो सकता है कि जब हम भगवान के से संबंध जो भी हैं, तदीय उपासनम, उनकी भी हम सेवा करें, जैसे कि यमुना, गंगा, तुलसी देवी, इन सब की जब पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, यह भी पाद सेवनम कहलाता है। यहां तक कि वैष्णव सेवा भी पाद सेवनम कहलाता है। तो वैष्णवों की सेवा करना, तुलसी देवी की सेवा करना, ये सब पाद सेवनम कहलाता है। या जब हम तीर्थ स्थान में जाते हैं, भगवान की श्री विग्रह का दर्शन करते हैं, विग्रह का स्पर्श करते हैं, भगवान की परिक्रमा करते हैं, धाम की परिक्रमा करते हैं, ये सब पाद सेवा है। तो बेलगाम में राधा गोकुलानंद मंदिर, ये भी एक धाम है, क्योंकि यहां पर राधा गोकुलानंद निवास करते हैं, इसलिए ये भी वैकुंठ है, ये भी भगवान का धाम है। तो आप सब अपने अपने घरों से जब यहां आते हैं तो आप भी पाद सेवनम कर रहे हैं। केवल जो आने का कष्ट आप करते हैं, वो कष्ट भी आपको भक्ति में आगे बढ़ाएगा। यहां आने के बाद फिर आप भगवान का दर्शन करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, हरि कथा सुनते हैं, प्रसाद का सेवन करते हैं, इन सब चीजों से लाभ तो अवश्य होगा ही, परंतु घर से यहां आने का जो कष्ट है वो भी एक सेवा है, ये भी पाद सेवनम कहा जाता है। इसके बाद में अर्चनम, मतलब अर्चा विग्रह की सेवा करना, वंदनम, सुंदर स्तुतियां, वंदना करना भगवान के, सख्यम, भगवान के प्रति एक मित्र या सखा की भावना रखना, दास्यम, दास्य रूप में भगवान की सेवा करना, और आत्मनिवेदनम, मतलब अपना सब कुछ न्यौछावर करना भगवान श्री कृष्ण के प्रति, उनके चरण कमलों में पूरी तरह से शरणागत होना, इसको आत्मनिवेदन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये नवधा भक्ति कहलाती है। भक्ति चेन नव लक्षणा इति पुंसा अर्पिता विष्णु। तो जब ये चार, ये नौ चीजें भगवान विष्णु के चरण कमलों में अर्पित किए जाते हैं तो इनको भक्ति कहते हैं। विष्णु स्मरणम, तो जब हम किसी और के प्रति ऐसा करते हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, तो वो भक्ति नहीं कहलाता है। प्रहलाद ने स्पष्ट शब्दों में इसकी व्याख्या की है। प्रभुपाद जी कहा करते थे, ये काली कीर्तन, दुर्गा कीर्तन, ये सब क्या है, ये कीर्तन नहीं है। कीर्तन मतलब हरि कीर्तन, कृष्ण कीर्तन बस। और देवी देवताओं की जो कीर्तन है, स्मरण श्रवण है, वो श्रवण कीर्तन स्मरण नहीं कहलाता। केवल भगवान के बारे में जो श्रवण कीर्तन होता है उसी को श्रवण कीर्तन कहते हैं वास्तव में। तो हिरण्यकश्यप ने यह सुना, हृदय को बड़ा धक्का पहुंच गया कि अरे दोबारा ये बात, प्रहलाद को जोर से धक्का मारकर अपने गोदी से नीचे फेंक दिया और क्रोधित होकर शंड और अमरक से कहने लगे, अरे मूर्ख, हे ब्राह्मण, तुमने ये सब क्या सिखाया है बकवास मेरे बच्चे को। अच्छा असुर होने के बजाय ये तो मेरे शत्रु विष्णु का भक्त बनते जा रहा है। वैसे मुझे ये लग रहा है कि एक मित्र का वेश पहनकर तुम मेरे शत्रु हो और मेरे ही घर में रहकर मेरे खिलाफ गद्दारी कर रहे हो। तो ये सब सुनकर शंड अमर को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और बड़ा दुख भी हुआ, और हिरण्यकश्यप के सामने हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे असुरों में सर्वश्रेष्ठ, आपका इस तरह से कहना उचित नहीं है, क्योंकि हमने सही चीजें जो असुरों को सीखना चाहिए वही मात्र सिखाया है। ये प्रहलाद ने ये सारी चीजें कैसे सीखे, कहां से सीखे, हम तो नहीं कह सकते। 24 घंटे तो हम पहरा दे रहे हैं, लेकिन ये सब चीजें प्रहलाद अंदर से ही कह रहा है, उसकी स्वतः से, हृदय से जागृत हुई भक्ति के बल पर ये सब ऐसे बोल रहा है। तो उस समय जब हिरण्यकश्यप ने सुना तो सोचा कि ठीक है, शायद ये लोग सच बोल रहे हैं, तो प्रहलाद की ओर अपना क्रोध केंद्रित कर दिया। कह रहे, प्रहलाद अगर तुमने ये सब चीजें तुम्हारी पाठशाला में नहीं सीखी हैं, तो बताओ कहां सीखी हैं तुमने, किसने तुमको सिखाया है। तो प्रहलाद भी हालांकि नीचे गिर पड़े थे, उठे आराम से ठंडे दिमाग से बिना विचलित हुए बोलने लगे, मतिर्न कृष्णे परतस्वतो वा मिथो भिपद्येत ग्रह व्रतानाम अदांत गोभीर विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। प्रहलाद बोलने लगे कि ऐसे व्यक्ति होते हैं जो केवल इंद्र तृप्ति के कार्य में लगे हुए होते हैं, अदांत गोभीर, इसीलिए विषताम तमिश्रम, हमेशा वो नरक की ओर चले जाते हैं, और ऐसे लोगों के लिए कृष्णमती, भगवान श्री कृष्ण या विष्णु के प्रति आकर्षण या रुचि कभी भी जागृत नहीं हो सकती है। चाहे अपने ही खुद के प्रयास से करें या दूसरे उनको उपदेश दें या दोनों हो, खुद भी प्रयास करें और दूसरे भी बोलें, फिर भी इनके मन में कृष्ण भक्ति का आना बहुत कठिन है, क्योंकि वो केवल इंद्र तृप्ति में लगे हैं, और इंद्र तृप्ति ऐसा कार्य है जैसे पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम, जो चबाए हुए चीज को बार बार चबाना, यह है इंद्र तृप्ति। जो विषय भोग हमने अनादि काल से अनंत कोटि योनियों में हमने बार बार अनुभव किया है, वही इंद्रिय भोग हम फिर भी मनुष्य योनि में आकर करते रहे तो क्या लाभ है इसका, क्या मिलेगा हमें, कोई लाभ नहीं है। तो इस प्रकार से प्रहलाद ने कहा कि कृष्णमती ऐसे लोगों के हृदय में कभी भी आ नहीं सकती, और आगे प्रहलाद कहने लगे, नते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णुम दुराशयाये बहिरर्थ मानिनः। हे भगवान, हे हिरण्यकश्यप, जो व्यक्ति दुराशया बहिरर्थ मानिनः, इन बाहर के वस्तुओं से उसका मन चमक धमक से प्रभावित हो गया है, उसके मन में गलत इच्छा हो जाती है विषय भोग के लिए, और वो नहीं जानता है कि उसके जीवन का उद्देश्य है कि वो भगवान विष्णु के चरण कमलों को अपना गति बनाए। अंधा यथांधेर उपगीयमानात् ते पीश तंत्र्याम उरुदाम निबद्धा। क्योंकि ये सारे लोग अंधे लोगों के पीछे जा रहे हैं, अंधे लोग इनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे। नेताओं को पता नहीं है कि आध्यात्मिक जीवन क्या है, और प्रजा को मालूम नहीं है। जब अंधे दूसरे अंधे को मार्गदर्शन करके हाथ में हाथ पकड़ के ले जाता है तो दोनों गड्ढे में गिर जाते हैं, क्योंकि दोनों ही इस प्रकृति के कड़क नियमों से सख्त रूप से बांधे गए हैं। और आगे प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप को बताया कि जब तक महीयसाम पादरजोभिषेकम, जब हम किसी महान वैष्णव के चरणों की धूलि से अपना अभिषेक नहीं कराएंगे, तब तक हम इस भौतिक आसक्ति से मुक्त नहीं हो पाएंगे, भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा नहीं पाएंगे। तो इस ये सब बातें सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध और भी बढ़ गया, और जोर से बोलने लगे कि अरे ये प्रहलाद तो बड़ा दुष्ट निकला, मेरे शरीर से उत्पन्न हुआ ये बालक, सबसे अच्छा असुर होना चाहिए था इसे, लेकिन मेरे शत्रु विष्णु का भक्त ये बन गया। वास्तव में कहा जाता है कि बाहर का कोई व्यक्ति हो लेकिन अगर उसके अंदर अच्छे गुण हो तो हम उसको पुत्र के रूप में भी स्वीकार कर सकते हैं, हमारे परिवार का सदस्य भी बना सकते हैं, लेकिन अगर वही बच्चा, अगर हमारे शरीर से उत्पन्न हुआ बच्चा अगर हमारे खिलाफ कार्य करे तो उसे भी त्यागना चाहिए। जैसे कि अगर हमारे हाथ में एक ऐसा रोग आ जाए जो कि सारी शरीर में फैलकर शरीर को नष्ट कर सकता है, तो हमें हाथ को काट कर फेंक देना चाहिए सारे शरीर को बचाने के लिए। ठीक उसी तरह से ये प्रहलाद हमारे असुर वंश में एक बड़ी बीमारी की तरह फैल रहा है, इसलिए इसको काट कर फेंकना आवश्यक है। शंड अमरक भी कहने लगे कि वास्तव में यह प्रहलाद तो एक चंदन के वन में एक कांटे के झाड़ के बराबर है। दूसरे शब्दों में शंड अमरक कहना चाहते थे कि असुर वंश ये चंदन के पेड़ की तरह है। सारे असुर, हिरण्यकश्यप सबसे बड़ा चंदन का पेड़, और सारे जो विप्रचित्ति और दधिमुख के सारे हैं, ये सब चंदन के पेड़ हैं, और प्रहलाद इन सब के बीच में एक कांटों का पेड़। और शंड अमर कहने लगे कि चंदन के पेड़ को काटने के लिए परशु का इस्तेमाल किया जाता है, और ये परशु विष्णु है, और ये परशु का जो हैंडल होता है वो कांटों के पेड़ से बनाया जाता है। तो इसलिए विष्णु ये परशु हैं जो कि असुर वंश को की हत्या करने के लिए ये प्रहलाद नाम के कांटों के झाड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए कांटे के झाड़ को काट के फेंक देना चाहिए। हिरण्यकश्यप बोलने लगे, इसलिए हे असुरगण, इस प्रहलाद की हत्या की जाए अभी की अभी, इसी क्षण। तो वहां के भयंकर भीषण जो असुर थे, वहां देखने से ही आदमी कांप जाए, इतने भयानक दिखने में ये थे। उनकी बड़ी बड़ी दांतें और लाल लाल आंखें और ताम्र रंग के उनके बाल और आंखें, और बड़े कठोर शब्द बोलते हुए प्रहलाद के सामने आए, मारो इसे, काटो, चीर चीर कर डालो इसे, और अपने अस्त्र शस्त्र लेकर प्रहलाद के ऊपर प्रहार करने लगे। लेकिन जितना भी वो प्रहार क्यों ना करें, प्रहलाद का एक बाल भी बका नहीं, प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। तो हिरण्यकश्यप ने अपने असुरों को और आदेश दिया, और असुरों ने बहुत प्रयत्न किया प्रहलाद की हत्या करने के लिए। प्रहलाद को गरम तेल के एक पात्र में डाल दिया, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। प्रहलाद को आग में फेंक दिया, कुछ नहीं हुआ। एक पहाड़ के ऊपर से नीचे फेंक दिया, लेकिन स्वयं विष्णु ने आकर उनकी रक्षा की। प्रहलाद को एक पागल मतवाले हाथी के पैरों के तले लग दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जहरीले सांपों के गड्ढे में डाल दिया, कुछ नहीं हुआ। तलवार से, त्रिशूल से आक्रमण किया, कुछ नहीं हुआ। जादू टोना का प्रयोग किया, कुछ नहीं हुआ। इतना सब होने के बावजूद जब कुछ नहीं हुआ, तो हिरण्यकश्यप ज्यादा से ज्यादा क्रोधित और चिंतित भी होने लगे। और एक दिन हिरण्यकश्यप अपने आप से बोलने लगे, ये प्रहलाद जो मेरा 5 साल का बेटा है, ये बड़ा विचित्र लड़का है। इसकी अंदर ऐसी निर्भयता मैंने आज तक नहीं देखी है। केवल है 5 साल का बालक, लेकिन इसको इतनी साहस कहां से मिलती है, इतनी शक्ति कि मैं भी इस शक्ति को पार नहीं कर सकता। ये बच्चा मेरे से ज्यादा भी शक्तिशाली है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद यही बच्चा मेरे मृत्यु का कारण हो सकता है। मैंने हर दृष्टि से प्रहलाद की हत्या करने का प्रयत्न किया है, मेरे साथ में मेरे शक्तिशाली साथियों ने भी प्रयत्न किया है, लेकिन इसका एक बाल भी नहीं बके जा रहा है। तो क्या किया जाए, ये बड़े चिंता की बात है। तो ऐसे सोचते सोचते जब बड़े निराश हो रहे थे हिरण्यकश्यप, उस समय शंड और अमरक आए और कहने लगे कि हे हिरण्यकश्यप, हे असुरों के राजा, आपको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप तो ब्रह्मांड के राजा हैं। आपके भ्रुकुटी के हिलने से ही देवी देवता कांपते हैं। ये साधारण 5 साल का बच्चा क्या नुकसान कर सकता है आपको। हमारा सुझाव यह है कि वरुण देव के पाश से इसको बांध दें और इसका शिक्षण जारी रखें, और फिर आगे चल के जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो अभी जो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है वो बुद्धि सुधर जाएगी, इसके होश ठिकाने आ जाएंगे, और फिर से वो प्रामाणिक असुर बन जाएगा जैसे कि आप आशा करते हैं। तो फिर से हमें प्रयत्न करने का अवसर दीजिए, हम उसे अच्छे से अच्छा असुर बनाने का प्रयत्न करेंगे। तो हिरण्यकश्यप के पास और कोई चारा तो था नहीं, तो कहा ठीक है। और फिर से शंड और अमरक ने प्रहलाद को अपनी पाठशाला में ले लिया, और प्रहलाद जब भी मौका मिलता था जब शंड और अमरक अपने घर में जाते थे और अपने मित्रों के संग उनको थोड़ा समय मिलता था तो उन सबको बुलाते थे और दिव्य उपदेश करते थे। छोटे बच्चे थे सब, सभी लोग खेलना चाहते थे, लेकिन प्रहलाद बोलते थे नहीं नहीं अभी खेल का समय नहीं। बच्चे कहते थे कि अभी तो हमारे खेलने की उम्र है, अभी आप ये सब दर्शन वर्शन बोल रहे हो, भक्ति भक्ति की बात कर रहे हो, ये हमारी उम्र की बात नहीं है। फिर प्रहलाद ने उनको इर्द गिर्द अपना बिठाया। सभी लोग प्रहलाद से बहुत प्रेम करते थे, बड़े मासूम थे सारे बच्चे। हालांकि वो असुरों के बच्चे थे, लेकिन प्रहलाद का प्रभाव इतना था कि सभी बड़े निर्मल कोमल थे। सब प्रहलाद को घेर कर बैठे और प्रहलाद के मुख को बड़े आतुरता से उसकी ओर देखने लगे और ऐसे लगता था जैसे चंद्रमा तारों से घिरा हुआ है। और फिर प्रहलाद ने अपना उपदेश आरंभ किया। और प्रहलाद ने क्या उपदेश दिया इन बच्चों को, वो आज हम शाम को सुनेंगे। और उसके बाद में क्या हुआ ये सस्पेंस हम शाम तक रखेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
प्रभु जी, प्रहलाद महाराज की जो माता थी कयाधु, उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं।
वैसे कयाधु तो भगवान की भक्त थी, लेकिन अभी ये कथा नहीं बोलेंगे, ये शाम को बोलेंगे। क्योंकि आगे आगे चल के जब प्रहलाद के मित्र उनसे प्रश्न करेंगे तो प्रहलाद के जवाब में ये सब बातें आ जाएंगी, ठीक है? तो शाम के लिए थोड़ा सस्पेंस छोड़ेंगे।
देवल प्रभु जी, सारे देवतागण तो अमृत पीने के बाद अमर हो चुके थे, फिर वो राक्षसों से क्यों घबराते थे?
अमृत पीने से केवल उनको लंबा जीवन मिलता था, ऐसा नहीं है कि वो वास्तव में अमर हो सकते हैं। अमर इसलिए कहा जाता है कि इतना लंबा, इतनी लंबी उनकी आयु हो जाती थी, जीवन की अवधि इतनी लंबी कि एक दृष्टि से कहा जा सकता है कि वो अमर हैं। लेकिन वास्तव में कोई अमर नहीं हो सकता। यहाँ आ ब्रह्म भुवना लोक पुनः आवर्तिनो अर्जुन माम उपेत्ति तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्म लोक से लेकर पाताल लोक तक सभी प्राणियों की मृत्यु होती है, केवल जो मेरे धाम को प्राप्त होता है हे अर्जुन, वही वास्तव में अमृत अवस्था की प्राप्ति कर सकता है। ऐसा कृष्ण भगवान अर्जुन को गीता में समझाते हैं। तो देवताओं ने जो अमृत का पान किया उससे उनको लंबी आयु मिल गई, उनको शक्ति मिल गई, उनको तेज मिल गया। लेकिन हिरण्यकश्यप इतना शक्तिशाली था कि इन देवताओं की अमृत का जो असर है वो उसके सामने कुछ भी नहीं था। वैसे महाराज वेन थे, बहुत साल पहले महाराज वेन भी हिरण्यकश्यप की तरह दुष्ट थे, लेकिन इतना होते हुए भी अपने हृदय में ब्राह्मणों से घबराते थे। क्योंकि ब्राह्मण अगर क्रोध करेंगे तो वो शाप दे सकते हैं, ब्रह्म शाप से घबराकर थोड़ी उनकी हरकतें सीमा में थीं। लेकिन हिरण्यकश्यप ब्राह्मणों से भी नहीं घबराते थे, क्योंकि उन्होंने इतनी भयंकर तपस्या की थी जो कि भृगु जैसे महर्षि ने भी नहीं किए थे, नहीं कर पाए थे। और इसलिए भृगु महर्षि जैसे महान ब्राह्मणों को भी यह शक्ति नहीं थी कि वो हिरण्यकश्यप को रोक दें। तो देवी देवताओं की बात क्या है, इसलिए हिरण्यकश्यप अपने इतनी शक्ति की वजह से इतना घमंड हो गया हिरण्यकश्यप को और सारे ब्रह्मांड को, सिवाय ब्रह्मा विष्णु महेश इस हिरण्यकश्यप ने सबको वश में कर दिया था।
कटने के बाद उसके सर कटने से भी जिंदा बच गया था ना?
हाँ, राहु तो बच गया था, लेकिन अमृत का पान करने से केवल उसके सर का हिस्सा है वही जीवित रह गया। जो नीचे का हिस्सा है जहां अमृत नहीं पहुंचा वो तो नष्ट हो गया, नष्ट हो गया। पेज 51, दशावतार स्तोत्र।
प्रलय पायोदि जले धृतवानसि वेदम् विहितवहित्र चरित्रमखेदम् केशवधृत मीन शरीर जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तव पृष्ठे धरणि धरण किण चक्र गरिष्ठे केशवधीत कूर्म शरीर जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्न शशिनि कलंक कलेव निमग्न केशवधृत शुकर रूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय जगदीश, अवकर कमल वरे नकमद्भुत श्रृंग दलित हिरण्यकशिपूतनुभृङ्गम् केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। सवकर कमल वरे नखमद्भुत शृंग दलित हिरण्यकशिपूतनुभृंग केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश, लयसि विक्रमणे बलिमद्भुत वामन पदनख नीरजनित जन पावन केशवधृत वामन रूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय जगदीश रुदिरमये जगदपगत पापम् स्नपयसि पयसि शमित भवतापम् केशवधृत भृगुपतिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे वितरसि दिक्षुरणे दिक्पतिकमनीयम् दशमुखमौलिबलिमरमणीयम् केशवधृत राम शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे शिवपुषि विशदेवसनम् जलदाभम् हलहति भीतिमिलित यमुनाभम् केशवधृत हलधर रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे विदेरः श्रुतिजातम् सदय हृदय दर्शित पशुघातम् केशवधृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे करवालम् धुमख्यतुमिव किमपि करालम् केशवधृत कल्कि शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे Thank you. कवेरिदमुदितमुदारम् शृणु सुखदम् शुभदम् भवसारम् केशवधृता दशविधरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। केशवधृता नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। हिरण्यकशिपु तनु भृंग केशवधृता नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। जय नर हरे जय नर हरे नर हरे जय नर हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव। जय भक्त प्रह्लाद भक्त प्रह्लाद जय भक्त प्रह्लाद। जय भक्त प्रह्लाद भक्त प्रह्लाद जय भक्त प्रह्लाद।